अब उनका जो लड़का है, देखा जैसे सभी लोग आकर के उनको प्रणाम करते हैं और उनकी कथाओं को बड़े प्रेम से सुनते हैं, बड़े सुंदर। कैसी उम्र? 5 वर्ष की। और इसकी उम्र कितनी थी?
5 वर्ष।
और उनकी उम्र कितनी थी? 7 वर्ष की। मेल होगा कि नहीं? वो भी नंगे, ये भी नंगा, बड़े दिन मिल गए और बहुत स्नेह करते। फिर भी लोग जो उनको इतना आदर देते, सम्मान देते, इसलिए कुछ उनके प्रति श्रद्धालु तो था किंतु मर्यादा रखता, और वो लोग बड़ी प्रतिभा करते। चतुर्मास में वो लोग एक बार करते, दो बार नहीं, वो भी एक ही चीज को ही एक साथ में करते थे। खाने पीने के आडंबर में अधिक नहीं रहते, तो पक्षी नहीं रहेंगे सारा दिन। जैसे यहाँ पर चौका चूल्हा सारा दिन चौका है और 10 आदमी यहाँ पर चौके में काम कर रहे हैं, और गृहिणी को गृहस्थ को पुष्ट नहीं चौके से, तो ऐसा उस समय नहीं था। कोई एक चीज बना दिया, रख दिया, अधिक बनाने को 5, 6, 10 भी सब्जी सब्जी नहीं रख। मैं समझता कि सबको उस समय होगा, बस एक साथ में नमक लगाया और पानी दे करके पी जाएगा, ऐसे ही थी। कुछ खा लिया, चना बना, कभी चना तो भी उठी नहीं, खाने का झंडा कर दिख नहीं गिर गया, उसमें हमारा शायद फलफूल होगा, बस काट कुट करके ठाकुर जी को भोग लगाया। आम के दिन में आम, खरबूजे खरबूजे, बेल, ये सब काफी उस समय जंगलों में और ये सब होते थे, जिसमें रसोई की कोई जरूरत ही नहीं होती। कुछ हवा पी लिया, कुछ पानी पी लिया, बस ये सब चीजें नहीं थी। इसलिए कोई अधिक समय इसमें नहीं देते, वो लोग हरी कथा में रहते, भगवत चिंता में लगे, ध्यान अपने आप लग जाता, सत्य का समय बिना प्रयास के। दीक्षित होने का कोई कारण नहीं था, टीवी और ये सब तो थी नहीं जिससे कि मन इधर भर जाए, पैसा खर्च कोई खर्च ही नहीं था। जब तक हम लोग भी संसार में थे उस समय तक खर्चा नहीं था, गृहस्थ के घर में सभी खुश रहते थे, क्या जाता था। और एक घर भी नहीं बनाते, पैसे भी खर्च नहीं। आज जब तक एक घर बनाने में कम से कम तो 1.5 लाख से कम में एक घर नहीं बने, ये सब समस्या नहीं थी। काट लिया जंगल से, अपना घर बना लिया, हो गया। बैंक इत्यादि नहीं थे, अकाउंट नहीं रखना पड़ता, हम लोग अकाउंट और फसलों में जो फसल जो कुछ प्रसाद पाते एक बार या उसमें कुछ दूषण रहता है। यहाँ जो करके महात्माओं से करता है, थोड़ा शरीर ऐसे नहीं जबरदस्ती नहीं, तब तो उनकी कृपा प्यार के साथ में खाते थे, उसमें कुछ रख देते थे उसके लिए, उसके खाने से प्रतिदिन उनके चरणों की धूली लेता था, मुख से निकली हुई बातों को लेता था। इन चीजें हमारे भक्ति में सहायक है। भक्त पद पद धूली, भक्त पद जल, भक्त भुक्त तेज, ये 3 साधन। भक्तों की चरण धूली, भक्तों के मुख निश्चित वाणियां, उपदेश उनके जूठे, और उनके पानी के पैर खुले हुए पानी। ग्रहण करने का तात्पर्य क्या है? ये उनके प्रति शरणागति है। हम तो वैष्णव का चरण छू करके फिर हाथ धो करके माला करने बैठते हैं, तो अपवित्र रह गए। मेरी समझ में ये नहीं आता, ये क्यों? जिसके द्वारा जगत पवित्र हो जाता है भगवत भक्ति आ जाती है जिनके चरण की धूलि से, फिर अपवित्र हो गए तहां होना पड़ा, ये हमारी समझ। हमने देखा है बचपन में चरणामृत लिया, मुख ऐसे लेकर और ऐसे फैला करके, हमने ये देखा, ये थोड़ी हमको अच्छी लगती। लोग कहते हैं कथित भगवान को और दूसरे रूप में हम जो प्रसाद देंगे तो झूठा हो जाएगा, तो भगवान का कोई चीज झूठा होता है कि नहीं होता, ये तो विचार नहीं करता। साधारण लोगों के लिए ऐसा व्यवस्था दिखा गया कि तो यथार्थ में कोई भी व्यक्ति अपवित्र नहीं होता जो प्रसाद लेने के बाद भी भगवान को मिले, ये कनिष्ठ अधिकारी उत्तम अधिकार में ये सब नहीं है। महाप्रसाद छू करके बच्चों का पद छू करके और ये साधारण लोगों के लिए जिनके ऊपर में कुछ स्मृतियों का प्रभाव उन लोगों का और जरूरी है नहीं, किंतु उत्तम भागवतों के लिए ये सब जरूरी है, वो कभी अवपित्र नहीं। कपिल देव की मैया देवहूति शक्ति कर रही है भगवान का स्मरण कर रही है, अपवित्र है, पानी का शौच भी नहीं किया, बड़े बड़े देवताओं से भी बड़ी तीन चीजें ये जो बताया भक्ति के रस में प्रवेश करने के लिए बहुत है। किसी का चित्त पवित्र नहीं हो रहा है तीन चीजों का सेवन करें, कुछ दिनों तक रहते रहते कोई प्रसाद सेवा करते करते उनके गीले कपड़ों को ले, कपड़े नहीं तो गीले कपड़े का प्रश्न भी नहीं, उनके साथ में स्नान कर जाते, उनके सम्मंडलों को पानी में भर लेते, जरा बेटा पानी तो लाओ, पानी दे दे, और उनका चरणों का बुखार बिंद की बातें ये सुनने क्या देते और उनका जूठा दे देते, कुछ दिनों में उनका चित्त स्वस्थ हो और वो जो हरि कथाएं सुनते थे कि भगवान का मदन करना चाहिए कैसे स्वयं आचरण करते, सभी भी करते थे नाम का कीर्तन करते, भागवत की कथा सुनाते, वेदों की व्याख्या करते, भक्ति पर वेदांत इत्यादि का विचार होता, उसको सुन करके धीरे 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 भक्ति देवी उनके हृदय में चाहता, अभी ना उनके रहता नहीं और सेवा की मात्रा भी और बढ़ गई, अनुराग बढ़ गया अपने आप, चार मास बीतते बीतते ही उनकी भक्ति काफी होती। अब देखो किसी को छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, जिस दिन पैदा हुआ वो कैसा दुबला पतला, कुछ करने में समर्थ है, उसकी क्रिया क्या है, क्रिया रोने के अतिरिक्त और कोई क्रिया है, हाथ धुलाएगा ऐसा करेगा रोएगा और कुछ नहीं। जब भक्ति आविर्भूत होती है श्रद्धा के रूप में पहले उसके कुछ लक्षण क्या होता है, सबसे बड़ा लक्षण क्या है, किसी के घर में अपनी मैया को नाना प्रकार के कष्ट देता हुआ घर में बच्चा पैदा हुआ तो घर में बधाई क्यों बजती है, मैया को इतना कष्ट सह करके भी उल्लास होता है कि नहीं कि हमारे घर में हमको एक बेटा पड़ा है, ये उल्लास होगा कि नहीं, जब भक्ति के जन्म लेते ही छोटी सी अभी है और ये भक्ति पूरी विकसित नहीं हुई है, अभी श्रद्धा के रूप नहीं है, तब से भक्ति का आविर्भाव से ही हृदय में उल्लास जिसको आदमी देखने नहीं करता। लोग कहते हैं कि ये बड़े भारी बड़ी भक्त है, बड़े दुखी बहुत समस्याओं में फंसे हुए हैं, बेकार की गोबर का भक्त नहीं है, उनको थोड़ा सा सम्मान देने के लिए उनको उत्साह देने के लिए कहा था महाराज ये बड़े परम भक्त है, हम भी कह देते हैं बहुत बड़े, किंतु समस्या है, समस्या है भक्ति के जन्म लेते ही जिस दिन छोटा सा बच्चा पैदा हुआ कुछ वो भक्ति कष्टदायक ही होता है, उसको सब समय देखना सुनना पालना करना तेल उतर लगाना शक्ति का साफ करना कष्टदायक नहीं है, होने पर भी कितना उल्लास लोग महाराज नंद बाबा ने कितना लाख गए 20 लाख गाय दान करते सोना पर्वत तीन का पर्वत कपड़ों का पर्वत उनके घर में जो था वो सब उन्होंने दान कर महाराज दशरथ को जो चार पुत्र हुए जीत जी अभी पैदा हुए हैं क्यों तो भक्ति यदि हृदय में आ गई और उल्लास नहीं होगा आनंद नहीं होगा ये कभी नहीं हो सकता तो जो लोग दुखी हैं तो कभी भक्ति नहीं तो नहीं समझते हैं इसे भागवत में लिखा है सब एक संतान और धर्म जो भक्ति अदुख है अहेतुक अप्रतिहाता आत्मा आत्मा जो प्रसन्न होगी आत्मा के लिए धन शरीर के लिए प्रसन्न हो न हो इसके लिए नहीं लिखा कभी कभी हम आत्मा की वृत्ति का अनुभव नहीं कर पाते हैं वो दूसरी किंतु होती है ऐसा कभी हो सकता है कि आत्मा भीतर से निर्मल है निर्मल हो रही है कर्मश और आत्मा प्रसन्न हो रही है और ऊपर से कोई आदमी दुखी है ऐसा हो सकता है कभी कभी ऐसा हो सकता है अजामिन के लिए अजामिन ने जिस दिन पहले ही नारायण का नाम दिया था उसी दिन ही भक्ति देवी के हृदय में अंकुरित थी उसके सारे पाप दूर हो गए विश्वनाथ चक्रवर्ती इत्यादि ठाकुर जी विचार करते थे कभी वो दुखी रहता था शराब पीता था पूरे कर्मों में लिप्त था वो नहीं समझ सका जी ये इतना ही नाम लेने वाला इतना शक्तिशाली है कि विष्णु के दूत आ जाएंगे और जम के दूतों को फगा देंगे विष्णु से हमें उबार लेंगे और अंत में बैकुंठ को जाऊंगा ये नहीं इसलिए कभी कभी ऐसा होता उनके लिए कहा गया आशा बंद आशा बंद
हम उस पर शांति और सकाल
शांति अध्यक्ष काल और संदेश की मान आशा बंद आशा रखो आशा रहती है उन्हें ये भक्ति का भाव का लक्षण तो नर देवी बतला रहे हैं कुछ दिनों तक उनके संग मेरा नहीं कि देवी का प्रति बड़े उल्लसित हो गए बड़े कुछ दिनों में ही उनको निष्ठा हो गई उनका अनर्थ एक तरह से नहीं क्यों नहीं था इसका कारण पूर्व जन्म में वो ब्रह्मा जी के मन से प्रकट ब्रह्मा जी के वास्तविक जी से योनि के द्वारा किसी स्त्री से पैदा नहीं हुए थे ब्रह्मा जी ने कहा जन्म से ही तुम कहाँ जा रहे हो तुम्हें भगवान का भजन कर रहे हो विवाह शादी कर मर्यादे को पालन कर और भी सबसे धर्म का पालन उनको इसलिए पैदा उन्होंने कहा कि मेरे लिए संभव है मैं तो संभव तुम्हें पालन करेगा हमारी बात नहीं हम तो भगवान का भजन जाओ तुमको इतने परामर्श से शादी करनी पड़ेगी हमारी दृष्टि है और तुम इतने हजार वर्षों तक उसमें गंधर्व कुल में तुम रहेगा एवं मत किंतु संसार नहीं करूंगा कह करके गंधर्व कुल में गए ब्रह्मा की नजर उन पर थी है तो मेरा बेटा अब इसको कुछ का कल्याण होना चाहिए अब उस जन्म में ये पुष्कर में तपस्या करने जा रहे हैं ब्रह्मा जी यज्ञ करेंगे उनको कहा कि तुम गंधर्व हो गया तो क्या मेरा बेटा ही क्यों है, उस सबको लेकर के आना और वहीं पर यज्ञ करने के बाद में सबका मनोरंजन करना भगवत संबंधी की तरह कृष्ण दास इत्यादि की तरह प्रवचन के बाद में प्रवचन के बीच में जब नेता आदमी उब जाते जब में स्वाहा करते 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 मन उब गया, अच्छा अब ठीक है आज यही तक रहे कल होगा और आज फिर कर कुछ कथाएं तो उनको नारद जी को नियुक्त किया, उनका उपबरहण गंधर्व या कुछ नाम उस समय में कुछ कीर्तन संगीत कौन सा संगीत सामवेद का सामवेद कीर्तन में है, उन्होंने ऐसा किया सामवेद की तो बात छोड़ दी, उन्होंने कुछ ऐसे असली कीर्तन और भाव प्रदर्शन किए जो सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए, असली प्रदर्शन से ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए हमारे सामने और तुमने असली ये सब भाव दिखलाया, किसी गंधर्व ने तो पकड़ लिया होगा कुछ ऐसा किया होगा भाव जाओ संस्कृत को ले जाओ, बहुत पसंद बहुत अच्छा पिताजी मैं शुक्र होकर के जन्म लेना चाहता हूँ, मनुष्य को मैं अपने गंधर्व दे दिया था यहाँ पर तो मैं साधन भजन कर नहीं सकता था और मेरे लिए समय में सुहागा संसार में जो कष्टदायक चीजें हैं भक्तों को वही चीजें भजन में सहायक हो जाती है, यहाँ पर इसे कामना वासना तो थी नहीं पहले से ही भगवत भजन की उनकी इच्छा थी, इसलिए उनका चित्त तो स्वतः निर्मल था, इसलिए उनकी भक्ति प्रारंभ से ही जब भगवत सेवा की भक्ति भक्ति का उल्लास और साथ साथ में अनर्थ नहीं रहने की वजह से उनकी भक्ति रखना निष्ठा में पड़ता, कुछ दिनों में निष्ठा से धीरे 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 शुरू किया और रुचि के साथ साथ में कुछ यहाँ तक तो हो गया चार महीने में, हमारे इसमें चार जन्म लग सकते हैं 4000 जन्म लग सकते हैं एक जन्म की, इसलिए कि पहले जन्म की सुकृति नहीं है और उनकी पहले जन्म से ही वो थी, इसलिए उनके लिए तो सर्वसाज हो गया, हम लोगों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी सुकृति है और इसीलिए झट उन चीजों को इतना ग्रहण कर लेते हैं और भक्तिमान हो जाते हैं जो एक बूढ़े व्यक्ति जो बहुत दिनों से गुरु के पास में रह सके नहीं कर सकते कि देखो तो कल का टुकड़ा और हमको उपदेश देने आया हमसे अधिक ये होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा किसका मूर्धन्य का संस्कार है, पर नारद जी को जो नारद जी ने को जो उन लोगों ने जो उपदेश दिए और आज तक करके उन लोग जो उपदेश देते हैं उनसे सुनना है, ये सब भक्ति को बढ़ने के लिए भागवत में जो विचार आया है साधु संघ किसको कहते हैं वो सब होना चाहिए, किंतु आजकल वो प्रधान न रख करके प्रधान हो गया क्या जागृति अपनी अभिलाषाओं की देखनाने के लिए भक्ति किंतु हो गया सकता है अपनी प्रतिष्ठा लाभ भागवत में कहीं भी इन सब बातों का बढ़ावा नहीं दिया गया, कौन बातों को जो आउटवर्डली है बाहरी चीजें उन पर नहीं दिया गया, इसलिए कहा गया है भागवत अमल पुराण है, यहाँ तक कि उसमें ठीक ठीक उसमें कह दिया गया माता पिता गुरु भाई बंधु तथा भी यदि कृष्ण भक्ति ने कहा है कि देंगे उसमें हमारी मदद है उनको छोड़ो, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया, यदि गुरु हमारे भक्ति में सहायक नहीं है तो शुक्राचार्य को जैसे बलि दे छोड़ दिया गया, माता को भक्त में जैसे छोड़ दिया गया, भाई को जैसे विभीषण ने छोड़ दिया और पति को छोड़ दिया इन्होंने ऋषि पत्नियों अथवा ऐसी सब बात कोई नहीं कह सकता। इसे श्रीमद भागवत अमर पुराण है, निर्माण निर्माण प्रमाण है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा जी यदि भगवत भक्ति करना चाहते हो तो भागवत की बात उसमें जो कहा गया उसके पर उसने कोई भी बाहरी चीजों को नहीं बतलाया। ये भक्ति देवी जब जन्म लेती है किसी के हृदय में जिसकी अधिक स्थिति होती है उनको कैसे भक्तों का संग मिलता है। उस गांव में जो चारों आए नारद जी जो बच्चा था उसने निमंत्रण दिया उन लोगों को आने के लिए गांव में ना गांव वालों ने दिया क्यों आए दूसरे गांव में नहीं खड़े इसी गांव में आए क्यों भगवान जी इसकी व्यवस्था की ये इसके लिए नारद के लिए ही बच्चे के लिए ये भगवान देते किसी को हेतु की किताब आते हैं वो जो उनके हृदय में श्रद्धा के रूप में भक्ति बन गई वो कैसी थी। श्रद्धा दो प्रकार की होती है कृष्ण सेवा की वासना जो होती है दो प्रकार की होती है होती तो एक ही प्रकार की है किंतु जन्म लेने के समय में दो प्रकार की एक आदमी ने गुरुकुल में जन्म लिया अंधा होकर के जन्म लिया निर्धन घर में जन्म लिया और एक प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी तो उनकी कोख में जो दो बच्चे पैदा हुए वो कैसे थे अभी सुंदर आधुनिक किसी प्रकार की शिक्षाएं उनको मिली और वो भावी प्रधानमंत्री थे और एक दरिद्र घर में कला कुलुठार में शूद्र के घर में जन्म लिया वो भी कलांग रहा उसकी क्या उसी का जन्म दिया। तो भक्ति भी तरह तरह से होती है जिन लोगों के माध्यम से वो जाती है प्रवेश करती है उनका अनुरूप होगी। यदि नारद जी का संतोष से हमारी भक्ति हुई है तो भक्ति कैसी होगी यदि किसी कनिष्ठ भक्त के संग से कृष्ण सेवा की वासना निकली आई है तो वो कैसी होगी वैदिक वृत्ति होगी। इसलिए ये सब निर्भर करता है भगवान ने किसके लिए कैसी व्यवस्था की है अरेंजमेंट किया है उस महापुरुषों के संग से उनकी कैसी। यदि किसी को रूप गोस्वामी का संग मिल गया या रूप गोस्वामी के अंतरंग किसी भक्त से संग मिल गया जो कि कृष्ण के लीला स्थलों में जाता है लोट हो सकता है आंसू पड़ाता है सब समय हे राधे हे कृष्ण इत्यादि करता है हे ललित हे दिशा जिनका चित्त ब्रजभाव में वो स्रोत है ऐसे व्यक्ति के संग से बचपन से ही किसी को मिल गया पहला ही संग उनका मिला बचपन में 5 वर्ष की जब ज्ञान का कुछ विकास और कुछ भी उनके संग में रह गया उनकी सेवा की उनकी चरण धूलि दिया उनका जूठा कुछ भोजन किया उनकी बातें सुन रहा है उनकी भावनाओं को देख रहा है वो कैसे कैसे चलते हैं करते हैं तो उसकी भक्ति कैसे होगी। उसको जन्म देने वाली सत्ता इसलिए इसको कहते हैं नारद जी का संग कैसे महात्मा से हुआ समर्थन में अब विचार करो ये कैसे हैं कैसे हैं बद्री भक्ति के तो गुरु ही है भागवत इत्यादि के वक्ता है तो भागवत में वो गोपियों का प्रसंग नहीं पढ़े होंगे ना पढ़े होंगे उसके समझ में नहीं आया होगा कि गोपियों का भाव सबसे सर्वोत्तम है, नहीं समझेंगे। कौन जन्म में वो ज्ञानी थे? इस जन्म में जब नारद जी के साथ में संग हुआ या उसके पहले? जब नारद जी से उनका संग हुआ उसके पहले जन्म में वो हो सकते थे कि वो निर्गुण के उपासक, किंतु नारद जी के साथ में जिसका उनका संपर्क हुआ वो जन्म में क्यों नहीं? इसका प्रमाण क्या है? कोई है प्रमाण? मतलब तो सोचा, क्योंकि नारद जी से जिस जन्म उनका संग हुआ तो ये नारद जी खोज रहे थे कि भक्ति जो बूढ़ी हो गई है और ज्ञान कर्म ये जो बूढ़े हो गए उनके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य, तो ये कैसे नौजवान हुए? भक्ति तो नौजवान हो गई किंतु गुरु के लड़के जो नहीं हुए, इसके लिए खोजते 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 हर बार में वो मिले। उन्होंने कहा कि आप उसे सीधा, अरे तुम्हारे अंदर में उसी चीज है और तुम इधर करने को उनको भागवत सुनाओ, भक्ति एकदम फिर रसीली बन जाएगी और उनके दोनों बेटे कैसे हो जाएंगे? नौ जुआ उसी भागवत की कथा, भागवत की कथा नहीं जानते तो क्या सुनाते? भागवत किसको कहते हैं? जिसमें कृष्ण का जन्म से लेकर और ये सब लीलाएं जिसमें पढ़ी वो यथार्थ में भागवत, भागवत किसी को कर, और बाकी सब वो प्लेटफॉर्म जैसा उसका आच्छादन और ये सब चीजें हैं भागवत उसी को कर। भागवत से गोपियों का चरित्र यदि हटा दिया जाए, निकाल दिया, माइनस कर दिया, जो क्या बचा गया तो और पुराण प्रकरण हो जाएगा। भागवत की यही विशेषता है, गोपियों की विशेषता का भक्ति का ये प्रदर्शन, यही भागवत सर्वोत्तम भागवत है। ऐसे महात्मा ये जानते नहीं जो अष्टकाली लीला का चिंतन करते हैं, जिन्होंने इनको भी अष्टकाली लीला का ज्ञान की पद्धति दी थी, ऐसा प्रमाण होता, इसलिए वो ऐसे सनत सनातन वर्णित चरित्र राधे जय जय राधा जी का ये जिन्होंने वर्णन किया है ऐसे भक्तों को उनका उनका संग हुआ और ऐसे भक्ति में जन्म लिया उनके तो वो कैसे होगी? अब वो भक्ति तो पैदा हुई कि कभी कैसी है? बच्ची है, अधिक कभी कभी रोती होगी, कभी पैर ऐसे उछाल रही होगी, कभी अपने पैरों के जिसको उसमें दे रही है, कभी हंस भी रही है, कभी मुस्कुरा रही है, कभी तो हम लोगों की जो शिशु भक्ति उनकी ऐसी ही दशा, किंतु उल्लास रहता है, उस समय उसकी सेवा की जरूरत है। इनकी भक्ति चार महीने के अंदर में पुष्ट होकर के आसक्ति तक गई, आसक्ति के बाद में पूरी झलक प्रभु ने दर्शन दिए, और एक एक सेकंड भगवत दर्शन के लिए एकदम आकाशवाणी हुई अब इस जन्म में दर्शन नहीं होगा। क्यों? अब तुम भजन के प्रभाव से अपनी जो त्रुटियां हैं उसको दूर कर दो, जिससे मेरी त्रुटियां दूर हो जाएगी, राजसिक और तामसिक वृत्ति दूर हो जाएगी। सात्विक वृत्ति कुछ है, जंगल में रहूंगा, निर्जन में रहूंगा, झोपड़ी बना करके रहूंगा, जैसे वो लोग आए थे सनक सनंदन और झोपड़ी में थे, और निर्जन में रह करके सुना, क्या समय हो गया है? ये वृत्ति के वजह से वो रोक दिए गए, रोक नहीं दिए गए बल्कि साधन के लिए अवसर, अब वो वृत्ति नहीं घूमते, अमर नाम का कृष्ण पीना भी मिल गई, प्रतीक्ष में भगवान का भजन करते हैं, सुख दुख जो आते उसको सहते हुए निरंतर, कुछ दिनों के बाद मृत्यु आई उसके सिर पर प्रयास कर दिया। इन सब चीजों को गहराई से हम लोग यदि विचार करते सत्संग विचारों को पाएंगे कि हमको कैसे भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि मान लिया कि जैसे सत्यु का समय था बुद्धि निर्मल थी, इसलिए चार महीने में निष्ठा, फिर निष्ठा की उन्होंने कुछ दिनों के अंदर में अपने भाव को भाव अवस्था कर दिया, यहाँ तक तो उनका हुआ, इसके बाद में नहीं हुआ। इसके बाद में जब एक जितना जब हो गया, जब प्रेम की दशा जब आने को हुई, तो शरीर को छोड़ दिए। उन चीजों को हम लोग विचार करके भक्ति कभी हतोत्साह मत हो। कभी दुख भी आता है तो उत्साह के साथ सुनते सकते सर। और नारद जी की भांति भजन करते हुए हम आगे उसके लिए चलेंगे। सभी संसार के बाहरी कार्यों का भी जोर मत हो। हर रूप में हमको जो आ जाता है वैसा खाएंगे पिएंगे रहेंगे। हम भजन को अपना ऐसा कोई चीज मत करो जिससे तुम्हारी भक्ति और ऊपर हो। कोई बड़ा उत्सव इत्यादि, बड़े बड़े खर्चीले कोई प्लान, जैसे चित्र चंद मुझे विषय लोगों के पास में हाथ जा करके निपोड़ना पड़ेगा। रात निपोड़ना जानते हैं ना, रात निपोड़ सकते ये सब न करना पड़े। शुद्ध रूप में हम भगवान का भजन ऐसे लोगों का सुनो करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, परिप्रश्न करते हुए, परिपाठ करते हुए आदमी को देश के लिए प्रस्थान करना है। निशाचर देश में जा रहे हैं इसलिए निशा में ही हमको जाना पड़ेगा। तो फिर बोलो निशा में काम करते हैं, दिन में सोते हैं, इसलिए हमको वहां जाना है, तो इसलिए हमको यहीं से अभ्यास करते हैं। पहले नहीं निशा में ही हम जा रहे हैं, रात में जाएंगे और जब दिन में वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर जाकर के सोएंगे, वहीं से हमारा खाद्य परिवार होगा। फिर धीरे धीरे उनको जगाने की प्रतिष्ठा कर जाए। आप लोग सभी मिलकर के भगवान से प्रार्थना करें, मैं उनकी कोई चीज लेकर के नहीं आऊँ, अपनी चीज उनको लेकर के आऊँ। उनका अर्थ, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी कोई भी लुभावनी वस्तु हमारे लिए लुभावनी न हो, बल्कि हमारे विचारों को ग्रहण करते हैं।
Thank you. भक्ति राज्य में आगे बढ़ाने के लिए स्वामी जी की गीता जो थी भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए बड़ी ही अच्छी थी, लेकिन प्रवेश करने के बाद भक्ति राज्य में और आगे बढ़ाने के लिए और इसी इरादे से महाराज जी ने ये गीता हमको दी है। इस तरह से ये गीता जो पहले गीता प्रवेश करने के लिए थी और ये आगे बढ़ाने के लिए है, इस हिसाब से ये गीता उस गीता का महाराज जी के लिए पूरक है, यानी कि अगर हम दोनों को लें तो ये संपूर्णतम बन जाए। तो 5000 प्रतियां हम लोगों ने छपवाई हैं, महाराज जी ने छपवाई हैं, और इसका सारे विश्व में और विशेषकर हिंदी में होने के कारण भारतवर्ष में जितने भी अधिक से अधिक लोग हैं उसको ये स्वीकार करना है, लेना है। अभी 100 के करीब प्रतियां हमारे पास आ चुकी हैं, इसको लेंगे। अगर इसकी कोई यह कीमत क्या है तो मुझे निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम है। आप पूछो क्यों, मुझे लगता है कि महाराज ने 1-2 साल जितनी तन्मयता से और तल्लीनता से विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ की टीका का अध्ययन करके उसका अनुवाद कराया है, हरिप्रिया जैसे अपने बड़े ही प्रवीण शिष्यों के साथ बैठ के दिखाया है, क्या आप उसके समय की कीमत आंक सकते हैं, बता सकते हैं कितनी कीमत हो रहा है उस समय उनका? और उसके बाद भक्तों ने इतनी मेहनत से स्वयं अपने हाथों से इसको कंप्यूटर में लिखा, उसके बाद भक्तों ने ही इसको एडिट किया, उसकी कीमत नापना बड़ा मुश्किल काम है। मेरी आप सबसे यह प्रार्थना है कि आप सब लोग ये गीता ले जाइए। अभी तो 160 ही है, कुछ 10-10, 20-20 गीता अपने साथ रखेंगे, अपने मित्रों को देंगे और जितना भी अधिक से अधिक हो लोगों को इसको वितरण करेंगे, और महाराज जी का आदेश है इसको बड़ा ही गंभीरता से अध्ययन करेंगे, समझना आए तो आपस में चर्चा करके महाराज जी से पूछ के उनके शिष्यों से पूछ के उसको समझेंगे, और जिनको वितरण किया है उसी के अनुसार उसको समझाएंगे भी, और अधिक से अधिक इसको आगे हमने देना है। तो 160 गीताएं हमारे पास है, अभी ले जाइए। और कई लोग बार बार मेरे से पूछ रहे हैं इसका हम मूल्य क्या रखें, और जब मैंने महाराज जी से पूछा तो महाराज जी कहते हैं जो नहीं दे सकते हैं उनको मुफ्त दे दो, जो कुछ पैसा दे सकते हैं उनसे कुछ पैसे दे दो, और जो इससे अपना स्पॉन्सरशिप या अपना वो आगे और गीता छप सके, अपने इस तरह से कोई दान देना तो चाहते हैं उनसे दान दे दो, इसकी कीमत लगाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी भौतिकता के रूप से मैं आपको ये बता दूं कि इसको बनाने में, इसके कागज लाने में, इसे छपवाने में, अच्छा एक चीज तो बताना भूल ही गया, ये आप ऊपर का इसका फोटो देख रहे हैं, इसके अंदर भी 3-4 करीब 8 या 12 फोटो हैं, और इसमें श्याम रानी दीदी जिनको इस कौन से तो लोग जदू रानी जी से पहचानते हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर फोटो बनाई, ये भी उन्होंने बनाई है जो आप देख रहे हैं फ्रंट में, और इतनी मेहनत से बनाई है ये देखने वाली बात है। आप कृष्ण को देखेंगे इसमें देखते ही रह जाएंगे, बड़े ही सुंदर लुभावने, और कृष्ण वाकई ही कृष्ण जैसे आकर्षक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये फोटो महाराज जी के भावों का उद्गार किया है। यद्यपि सुरिका लकड़ी की रही हो, हाथ श्याम रानी दीदी के रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो संचालन है वो महाराज जी का स्वयं है, और उस स्वयं संचालक की जो ये भाव प्रकटीकरण है वो ये फोटो है जो आप बड़े गौर से देखें, और जो ये बड़ी वाली छवि है अगर कहीं आप कभी जाएंगे मथुरा वृंदावन देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। तो इस सब चीज को देखें, जो मटेरियल कॉस्ट है बनाने में कीमत हमारी 100 रुपए आई है, इसके अलावा जो जैसा देना चाहे जैसा देना चाहे आप लोगों के ऊपर हम निर्भर करते हैं। 10-10, 20-20 प्रतियां रखिए, आप रखिए और संग में पढ़ेंगे इसको, महाराज जी ने जो सख्त लिए पढ़ेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ जी की टीका हो सकता है किसी को सख्त लगे तो भक्तों के संग मिलकर बैठ के उसको समझेंगे, लेकिन उसी टीका को बाद में महाराज जी ने जो टीका, हाँ वही वही मैं कहने जा रहा था, उसी की टीका को जब विश्वनाथ चतुर्थी पाठी की अनुवाद करके फिर बाद महाराज जी ने अपनी उस पर टीका जो लिखी है उसी टीका को और सरलीकरण किया उसका और आसान कर दिया है। और महाराज जी ने जो लिखा है उसको जब हम पढ़ेंगे तो तुरंत समझ आ जाएगा। तो मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ, बहुत इसे गदगद हो गया है कि ये चीज नायाब आ गई है और बड़ी जल्दी इसकी इंग्लिश कॉपी भी आएगी, दो सारे विश्व में इसकी प्रचार होगा प्रचार होगा। ये स्वामी जी गीता यथारूप श्रीमद भागवत गीता यथारूप भागवत गीता ऐसे चीज के को और उसको साथ में लेते हुए उसको संपूर्ण करेगी उसको ये और भक्ति राज में उसको पढ़ने के बाद जो हमने अभी तक सीखा है उससे और आगे बढ़ाते हुए हमारे को मदद करेगी। बहुत प्रेमानंदे।